ये पंखा जरा बंद कर सकते हैं, क्योंकि पंखे की बहुत आवाज आती है। करताल है, करताल दो तीन और करताल। जय राधमाधव कुंज बिहारी, जय राधमाधव कुंज बिहारी, गोपी जाना वाला भाई, गोपी जाना वाला भाई वरधारी, जय राधमाधव जप बिहारे, जय राधमाधव जप बिहारे, शोदनंदन ब्रज जन रंजन, शोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बन चाए, जमुना तीर बन चारे, जय राधमाधव जप बिहारे, जय राधमाधव जप बिहारे, गोपी जाना वाला भाई वरधारी, गोपी जाना वाला भाई वरधारी, शोदनंदन ब्रज जन रंजन, शोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बन चारे, जमुना तीर बन चारे, जय राधमाधव जप बिहारे, जय राधमाधव जप बिहारे, गोपी जाना वाला भाई वरधारी, কপি জানাবানা ভাই সোজানন্দন ব্রজ জনন্দন সোজানন্দন ব্রজ জনন্দন ধনতিয়া অনচারে ধনতিয়া অনচারে জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভো নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত রাধা শিবাশদি গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণে ধন্য প্রভো নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত রাধা শিবাশদি গৌর ভক্তবৃন্দ জয় শ্রী কৃষ্ণ প্রভো নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত রাধা শিবাশদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে হ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai. Jai Radha, Rasbihari Radha, Rasbihari Radhe. Jai Sita Ram, Lakshman Hanuma, Jai Sita Ram, Lakshman Hanuma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Prabhu Jagadishwar Jnana Shila. Abhi Jai Om. I'm going to the bathroom. Bhakti Vyapta Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Shri Shri Gaura Nitai Ki श्री श्री राधा राज भाई लालदा स्वागत है श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की ऑल ग्लोरी श्री समुद्र बोली ऑल ग्लोरी समुद्र बोली ऑल ग्लोरी समुद्र बोली ऑल ग्लोरी श्री गुरु और श्री गुरु
हरे कृष्णा. तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य हम भगवान की अलग अलग लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं असीम जी, और आज हम भगवान की दो लीलाओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे. एक है किस प्रकार भगवान ने इन दो वृक्षों के द्वारा कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया, और समय हुआ तो भगवान की लीला जो कि सुदामा ब्राह्मण के साथ बीती थी उसकी भी चर्चा करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का 18वें श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है, वाणी गुदानु कथाने श्रवणो कथायाम हस्तो चा कर्मासु मानं तव पदयो नः स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सातं दर्शने तु भावं तनूनां वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मासु मनस्तव पादयो नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवसा जगत् प्रणामे दृष्टि सतम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मासु मनस्तव पादयो नः। स्मृत्यां शिरस्तावा निवसा जगत्प्रदामे दृष्टि सतम दर्शने स्थिर भवत्तनूनां वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मासु मनस्त पादयो नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवसा जगत्प्रणामे दृष्टि सतम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां
माता जी
जी
शब्दार्थ, वाणी शब्द, बोलने की शक्ति, गुणानुकथने, सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त, श्रवण कान, कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में, हस्त हाथ पैर तथा निंद्रियां, च भी कर्मशु आपका आदेश पालन करने में लगकर, मनः मन तव आपका, पादयो चरण कमलों का, न हमारी स्मृत्याम ध्यान में लगी रहे, शिरः सिर तव आपका, निवास जगत प्रणामे, चूंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व हैं तथा हमारे शिरों को नत होना चाहिए, भोग के लिए नहीं होना चाहिए, दृष्टि देखने की शक्ति, सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में, अस्तु इसी तरह लगे रहे, भवत तनु नाम जो आपसे अभिन्न हैं, अनुवाद अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे, हमारे सिर संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आँखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है, यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, नारद पंचरात्र भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाकर लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयंभू तथा शंभू जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा, यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उसे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत्म तत्पथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्ताम मे कया ग्राह्य, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवतम एकादश स्कंद 14 अध्याय 21 श्लोक में कहा गया है, यानुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। हरे कृष्ण।
ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाक्या चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वापदंतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं શ્રી રાધા કૃષ્ણ પ્રધાન સહગન લલિત શ્રી વિશાખાન્વિત હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુ તે સત્તા કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિષભાનુ સુતિ દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિય વંચ કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાચરી ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. વાણી ગુણાનુ કથને શ્રવણો કથાયામ હસ્તો ચ કર્માસુ મનસ્થ પાદયો નઃ સ્મૃત્યં ચિરસ્તાવ નિવસા જગત નામે દૃષ્ટિ સતમ દર્શનેસ્તુ ભવત તનુનામ. તે બડા મહત્વપૂર્ણ શ્લોક હૈ ઓર ઇસ શ્લોક કા ઉચ્ચારણ કોણ કર રહે હૈ? કુબેર કે પુત્ર. તો શ્રીમદ ભાગવતમ કે 10વે સ્કંદ મે આપ પરમ ભગવાન કે પ્રકટ હોને કે વિષય મે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતે હો ઓર ભગવાન કી અદ્ભુત લીલાઓ કે વિષય મે ભી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતે હો. હમારા ભાવ હોના ચાહીએ કે હમ કૃષ્ણ કથા મે રૂચિ લેં ઓર કૃષ્ણ કથા કા સ્મરણ કરેં. ભગવાન ગીતા કે અંત મે કહેતે હૈ મન મના ભાવા મદ ભક્તો મદ્યાજી મમ નમસ્કુરો માં મે વાછતિ સત્યમ તે પ્રતિ જને પ્રિયુષ્ય મે. મેરા ચિંતન કરો તો કઈ બાર ભક્ત પૂછતે હૈ કે હમ ભગવાન કા ચિંતન કિસ પ્રકાર સે કરેં, કયુંકિ ભગવાન કા ચિંતન કરના ઇતના સરળ નહીં હૈ. તો શાસ્ત્રો મે હમે ભગવાન કે દિવ્ય લીલા કે વિષય મે જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોતા હૈ. શાસ્ત્રો કે દ્વારા હમે ભગવાન કા ઉપદેશ પ્રાપ્ત હોતા હૈ ઓર ભગવાન અપને આપ કો આર્ચ વિગ્રહ કે રૂપ મે પ્રકટ કરતે હૈ. ભગવાન કે નામો કી મહિમા યે અનેક ઉદાહરણ હૈ જિનકે દ્વારા હમ ભગવાન કા ચિંતન કર સકતે હૈ. ભગવતમ કે પ્રથમ સ્કંદ મે આપ પઢતે હો કે જબ પરમ ભગવાન અપ્રકટ હો ચુકે હો ગયે થે તો ઉનકે સનાતન સાથી અર્જુન અત્યંત શોક મે થે, દુખી થે, ક્યુંકિ ભગવાન અપ્રકટ હો ગયે. ઓર ફિર અર્જુન ને ઉન ઘટનાઓ કા સ્મરણ આરંભ કિયા જિનમે સફળતા અસંભવ થી, પર પરમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કી કૃપા સે વો સફળ હો પાયે. ઓર ઇસકે પશ્ચાત અર્જુન ને ભગવાન કે ગીતા કે સંદેશ કા સ્મરણ આરંભ કિયા. જૈસે હી ઉન્હોને ગીતા કે સંદેશ કા સ્મરણ આરંભ કિયા વો એકદમ પ્રસન્ન હો ગયે. શોક ઉદાસી દુઃખ તો થા સમાપ્ત હો ગયા ઓર ઉન્હોને એસે લગા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફિર સે ઉનકે સાથ ઉનકે નિકટ ખડે હૈ. તો પ્રભુપાદજી ઇસ લીલા કે તાત્પર્ય મે સમજાતે હૈ કે જિસ પ્રકાર અર્જુન ને ભગવાન કે ગીતા કે સંદેશ કા સ્મરણ કિયા ઉસી પ્રકાર અગર ઇસ અંતરાષ્ટ્ર કે કૃષ્ણ ભાવના મે સંઘ કે ભક્ત ભી ગીતા કે શ્લોકો કા સ્મરણ કરેંગે તો વો આનંદ અનુભવ કરેંગે ઓર સદા યે મહેસૂસ હોગા કે પરમ ભગવાન ઉનકે સાથ ઉપસ્થિત હૈ. તો ઇસ સમય હમ ભગવાન દસવે સ્કંદ કે 10વે અધ્યાય કી એક બડી પ્રસિદ્ધ લીલા કી ચર્ચા કર રહે હૈ. आप 10वें स्कंद में पढ़ते हो भगवान क्यों प्रकट हुए, इस विषय की चर्चा हम जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करेंगे। और फिर आप पढ़ते हो भगवान ने माता पिता कैसे स्वीकार किया, किसने पालन किया, और फिर भगवान की बाल लीला के विषय में पढ़ते हो किस प्रकार भगवान ने अपनी बाल लीला प्रकट की। जब भगवान अपनी बाल लीला प्रकट कर रहे थे जो ब्रजवासी थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे। जब ब्रजवासियों ने देखा ये छोटा बच्चा, उसके कारण पुतना का वध हो गया, चिनावर्ता शकल असुरा अनेक असुर जो प्रकट हुए थे अलग रूपों में, इनका वध हो गया, तो वो सोचने लगे कहीं ये देवता तो नहीं है, लगता है कि इस पर नारायण की खास कृपा है, इतने बड़े बड़े असुर आए उनका वध करने के लिए। पर इसके वजह क्या देखा कि असुरों का ही वध हो गया। भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा जो भगवान के साथी भी थे वो ये नहीं पहचान पाए कि ये स्वयं भगवान है। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं। और ठाकुर भक्ति विनोद, एक महान आचार्य हमारी संप्रदाय में, ठाकुर भक्ति विनोद जी का खास त्याग है। प्रभुपाद जी कहते थे ही इज वर्चुअली द फाउंडर ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को शुद्ध रूप से स्थापित किया। महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात समय के साथ उनकी जो शुद्ध शिक्षा थी वो लोगों ने बदल दी थी। और ठाकुर भक्तिनो जी ने स्वयं प्रयास करके शुद्ध शिक्षा की स्थापना की, अनेक ग्रंथों की रचना की, लगभग 100 ग्रंथों की रचना की, उड़िया बंगला अंग्रेजी भाषा में। कई भजन जो हम गाते हैं उनकी रचना भी श्रील ठाकुर भक्तिनोद जी ने की थी। तो साक्षी भक्ति ठाकुर भक्तिनोद जी ने अपनी एक रचना में ये स्थापित किया है कि जो असुर जिन्हें मारे गए थे उनकी लीलाओं को सुनकर हमारे अनेक कमजोरियां जो हैं, जिसे हम अनर्था के रूप में जानते हैं, वो दूर हो सकती हैं। तो इन सब लीलाओं के पीछे एक बड़ा गहरा संदेश है, और जिस जो हमें समझना चाहिए। इस 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में आप पढ़ते हो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, यमुना अर्जुन वृक्षों का उद्धार। जो संत हैं वो सदा दूसरों का उद्धार ही सोचते हैं, दूसरों का लाभ। और इस लीला को सुनकर, इस लीला पर ध्यान करके, इस लीला को आप सुनोगे ध्यान से और समझोगे तो आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी दूर होगी। क्या है यह कमजोरी? अगर धन हो तो धन के साथ क्या आता है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना, है कि नहीं? धनी व्यक्ति बड़ी सरलता से आध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं, नहीं लेते? जब धन हो तो अक्सर आप क्या देखते हो? शराब का प्रभाव, सुंदर स्त्रियों का प्रभाव, घमंड गौरव का प्रभाव, ठीक है कि नहीं? धनी व्यक्ति क्या चाहता है अपने धन के द्वारा? अगर वो भक्त हो तो कहेगा मुझे धन का उपयोग करने दो भगवान के मंदिर बनाने में। जैसे प्राचीन समय में जितने बड़े मंदिर बने थे भारत में, सब राजाओं ने बनाया था। भारत में ही नहीं, क्रिश्चियन देशों में भी जो बड़े बड़े चर्च हैं जिनको सारी दुनिया देखने जाती है, ये सारे चर्चेस राजाओं ने बनाया था। तो धन भक्त हो तो धन का उपयोग करता है किस लिए? भगवान की सेवा में। और अभक्त हो तो धन का उपयोग करता है किस लिए? शराब में। शराब के साथ, केवल शराब से काम नहीं चलेगा, साथ में सुंदर स्त्रियों की, लड़कियों की संगत भी चाहिए, और अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की सुविधा। इसके साथ रहना है राजा जैसे, एक भारत का धनी व्यक्ति है उसके विषय में पढ़ रहा था एक रशिया की मैगजीन में, भारत का धनी व्यक्ति है, धार्मिक भी है थोड़ा, पर धन है काफी, छोटा खानदान है, पढ़ने के लिए दुनिया का सबसे महंगा मकान बनाया है, 180 गाड़ियां, 200 नौकर, और खानदान में कितने सदस्य हैं? 4 बस। और तो धन के द्वारा व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो ये जो धन का लालच, स्त्रियों का आकर्षण, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना जो कि कईयों में है, ये भावना और भौतिकता का प्रभाव, ये ठाकुर भक्तिनाथ जी के साथ के अनुसार समाप्त हो सकता है अगर हम ध्यान से कौन सी लीला सुने, किस प्रकार भगवान ने यमुना अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। तो कथा क्या है संक्षेप में, कुबेर हैं देवताओं के खजांची, उनके 2 पुत्र हैं, क्या नाम है, नलकवरा और मणिग्रीवा, और ये 2 बेटे एक थे शिव जी के भक्त। तो शिव जी के भक्त होते हुए, धनी पिता के पुत्र होते हुए, कैलाश पर्वत में जाने का वीजा मिल गया इन्हें। जैसे आप विदेश में जाते हो तो आपको वीजा चाहिए, तो कैलाश पर्वत में भी जाने के लिए वीजा चाहिए, और वहां मंदाकिनी गंगा के तट पर शराब वरुणी शराब उन्होंने पी हुई थी और स्त्रियों की संगत में खेल रहे थे। जैसे हमने कहा, धन हो और अच्छी बुद्धि नहीं हो तो उसका दुरुपयोग होगा, धन हो और ठीक बुद्धि हो तो उसका सदुपयोग होगा। तो नंदकुमार मणिग्रीवा स्त्रियों की संगत में जैसे हाथी हाथियों के साथ खेलते हैं वैसे खेल रहे थे, और नारद मुनि, नारद का अर्थ क्या है, जो हरे को नारायण देता है, नारद मुनि वैसे शक्तवेश अवतार हैं, चाहे व्यासदेव हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे मृगारी हो, नारद मुनि का एक ही भाव रहता है, कृष्ण भक्ति देना। तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा ये कुबेर के पुत्र इतने गहरे नशे में नंगी स्त्रियों के साथ खेल रहे थे जल में, और स्त्रियों ने जब देखा संत को आते हुए तो घबरा कर उन्होंने तो अपना शरीर ढक दिया, नंगा शरीर। पर ये 2 पुत्र इतने नशे में थे कि उन्होंने अपने शरीर को ढका नहीं, और नारद मुनि जब वहां आए तो देख पाए कि किस प्रकार कुबेर के पुत्र अंधे हो गए हैं धन के कारण। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इनका उद्धार करने दो, मुझे इन्हें कुछ ज्ञान देने दो, शिक्षा देने दो। तो नारद मुनि ने देखा किस प्रकार ये शरीर का दुरुपयोग हो रहा है, इस अध्याय में आप पढ़ते हो बड़ी सुंदर रूप से ये विचार कि शरीर का क्या हमें करना चाहिए। ये शरीर जब हमें प्राप्त होता है हम सोचते हैं हमारा शरीर है, उपयोग करो इसका इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर इस शरीर का उपयोग हमें करना चाहिए किस लिए, भगवान की सेवा में। अंत में ये शरीर नष्ट हो जाता है। बाइबल में एक कहावत है, 10 thy art, 10 thou shall become, कि तुम हो मिट्टी और मिट्टी बन जाओगे। प्रभुपाद अक्सर इस बाइबल के कोटेशन का उपयोग करते थे, चाहे आप मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन लोग मुसलमान लोग शरीर को दबाते हैं फिर अंत में चींटियां खा लेती हैं, हिंदू लोग जलाते हैं फिर मिट्टी बन जाती है, और पारसी लोग बोलना भी नहीं चाहिए क्या करते। तो ये शरीर जिसको हम इतना सजाना चाहते हैं, आईने के सामने 100 दफा दिन में जाते हैं ये सोचते हो कि हर मिनट हमारी खूबसूरती बढ़ रही है, ये शरीर अंत में तो मिट्टी बन जाएगा, और हम इतनी चिंता कर रहे हैं इसकी संतुष्टता की। तो नारद मुनि ने कहा, इन दो कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया, श्राप दिया कि तुम वृक्ष बन जाओगे पेड़। पर कहा बॉम्बे में, लंदन में, न्यूयॉर्क में नहीं, आप पेड़ बनोगे एक नंद महाराज के आंगन में। और इस श्राप के साथ एक वर भी दिया, वर क्या था, देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात तुम्हें स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ये जो पेड़ हैं, जैसे हमारे इस राधा राजवाड़ी मंदिर के आंगन में 2-3 पेड़ हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं, इन्हें सारा दिन राधा राजवाड़ी का दर्शन मिलता है। आप तो आते हो एक आरती में उपस्थित होते हो फिर भाग जाते हो, है ना, पर ये तो सारा दिन हर आरती में रहते हैं, इनका मंगल आरती में 100% अटेंडेंस है, सारा दिन भक्तों का कीर्तन सुनते हैं। तो ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, आप ये मत सोचिए साधारण, जैसे हमारे वृंदावन मंदिर में भी आंगन में बड़ा खूबसूरत तमाल का पेड़ है, सारा दिन राधा श्याम सुंदर का दर्शन लेते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि ये दो लड़के पेड़ जैसे नंगे खड़े हैं, पेड़ अक्सर नंगे रहते हैं, आप पेड़ों को कपड़े नहीं पहनाते, तो इन्हें पेड़ वृक्ष बनने दो नंद महाराज के आंगन में, और देवताओं के 100 सालों के पश्चात उन्हें क्या मिलेगा, भगवान का स्वयं दर्शन मिलेगा। तो कुबेर के दो पुत्र नलकर और मणिग्रीवा बन गए पेड़ नंद महाराज के आंगन में। इस 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में ये कथा पढ़ रहे हो, 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में आप कथा पढ़ते हो भगवान की दामोदर लीला की, जिसमें आप देखते हो कि गोपियों ने शिकायत की थी यशोदा माता से, आपका बेटा बहुत शैतान है, क्या करता है मेरा बेटा, मक्खन चुराता है, घी दूध। तो यशोदा माता कहती थी, तुम ऊपर क्यों नहीं रखते, ऊंचाई पर रखो तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो कहते थे, आपका बेटा तो बड़ा होशियार है, ऊपर भी पहुंच जाता है। फिर कहते थे, अंधेरे में भी पहुंच जाता है, कैसे, जो गहने पहने हैं गहनों से इतनी रोशनी निकलती है कि अंधेरे में वो पहचान लेता है कहां है मक्खन वगैरह। तो ये सदा माता पूछती थी, कभी तुमने अपने आंखों से उसे पकड़ा है करते हुए, तो फिर वो कहती थी, नहीं वो तो नहीं, हम कभी आंखों से नहीं देख पाए। खैर इतने लोगों ने शिकायत की थी कि यशोदा माता ने निर्णय किया, क्या, मुझे मेरे बेटे को थोड़ा सबक सिखाने दो, उसे मैं बांधूंगी और इस प्रकार वो सुधर जाएगा। तो यशोदा माता ने अनेक रस्सियों को लेकर बेटे को बांधने का प्रयास किया था, और सब रस्सियों को जोड़ते हुए भी ये रस्सी जो है दो उंगली छोटी निकल रही थी, और जब यशोदा माता प्रयास कर रही थी बेटे को बांधने के लिए, जो दूसरी गोपियां ये देख रही थी वो हंसने लगी, देखो यशोदा माता इतनी निकम्मी है, अपने बेटे को बांध भी नहीं सकती। और यशोदा माता का पसीना निकल रहा था कि सब हंस रहे मेरे ऊपर और मैं छोटे बालक को बांध नहीं पा रही। फिर भगवान ने देखा कि मेरी मां इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, तो फिर उन्होंने उन्हें बांधने दिया। तो भगवान जब देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए, हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के शरणागत समर्पण करने के लिए, फिर भगवान हमें बुद्धि देते हैं, योग्यता देते हैं, सफलता देते हैं, जिसके द्वारा आप उस स्थिति को प्राप्त कर सको। और अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान मदद क्यों करें। कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्फ। भगवान किनका सहयोग करते हैं, जो स्वयं प्रयास करते हैं। तो भगवान को बांधा हुआ था मां ने मोटर उखल के साथ, और भगवान को याद था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने इन दो पुत्र वृक्षों को ये वचन दिया है कि 100 वर्षों के पश्चात मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ये थे 100 देवताओं के वर्षों के हेवनली ईयर्स। हमारे वही पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है, तो अंदाजा लगाओ कितना लंबा सफर, कितना लंबा समय। तो भगवान ने कहा मुझे अपने भक्त की इच्छा को पूरा करना है। भक्त ने वचन दिया है, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, पूरे विश्व को सूचना दो क्या कौन दया प्रतिज्ञा नहीं न मैं भक्त। तो भगवान ने ये वचन, उनके भक्त ने वचन दिया था। कई बार भगवान के लिए भक्त का वचन का पालन करना बहुत कठिन बन जाता है। उदाहरण के लिए, जो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को अनेक वर दिए थे, हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि किसी प्रकार मृत्यु से वो बच पाए, तो उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्या की। आप एक दिन निर्जल रखते हो, सोचते हो कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। वह हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहे थे मंदारा पर्वत में, देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्होंने एक बूंद पानी नहीं पिया। अंदाजा लगाओ ये कोई छोटा त्याग है, एक बूंद त्याग पानी नहीं पीना 1000 सालों के लिए, तो उनमें इतनी शक्ति थी। तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा ने वर दे दिया था, ना तुम्हारी मृत्यु होगी आकाश में, ना पृथ्वी में, ना सागर में, ना किसी हथियार के द्वारा। तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को सब प्रकार के वर दे दिए थे, जिसके द्वारा हिरण्यकश्यप क्या सोचने लगे, अब मैंने चापलूसी तरीके से ब्रह्मा को उल्लू बना दिया। तो जब भगवान ने प्रकट होना था तो भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव के रूप में, ब्रह्मा जी के सब वचनों का पालन करते हुए। तो प्रभुपाद जी ने हंसते हुए एक लेक्चर में कहा कि आफ्टर किलिंग हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव टोल्ड ब्रह्मा, डोंट गिव सच बेनिडिक्शंस इन फ्यूचर, यू मेड माय जॉब वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद जी ने हंसते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से कहा हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात, ऐसा वर भविष्य में मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। क्योंकि भगवान को ब्रह्मा जी के सब वरों को दिमाग में रखते हुए प्रकट होना पड़ा नरसिंहदेव के रूप में। तो भगवान अपने भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। तो भगवान को बांधा हुआ था और फिर भगवान आगे बढ़े, उखल को दो पेड़ों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा, और जब जोर से खींचा तो ये दो अर्जुन वृक्ष जो थे, क्या हुआ, ये दोनों पेड़ जो हैं वो गिरे। और जब ये दो पेड़ गिरे, यमुना अर्जुन वृक्ष गिरे, तो इन पेड़ों से निकले कुबेर के दो बेटे, और इन बेटों के सिर से बहुत तेज प्रकाश प्रकट हो रहा था। और जब ये नलकर और मणिग्रीव निकले इन दोनों यमुना अर्जुन वृक्षों से, उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया भगवान को, उन्होंने प्रणाम किया भगवान को और कहा कि आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है हमारे गुरु नारद मुनि की कृपा से। और बड़े सुंदर स्तुतियों में उन्होंने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे एक शुरू से अंत तक भगवान के भक्त सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भागवत गीता के आठवें अध्याय में भगवत प्राप्ति जिसका विषय है, भगवान उपदेश देते हैं किस प्रकार हमें उनका चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं थिंक ऑफ मी एज वन इज अचिंत्य इनकंसीवेबल, जिसको आप भौतिक इंद्रियों से कभी समझ नहीं सकते। तो भगवान की अनेक गुण हैं और जिन्हें समझने के लिए हमें भागवत ब्रह्म संहिता इत्यादि ग्रंथों का सहयोग लेना चाहिए। तो बड़े सुंदर रूप से भगवान के भक्त परम भगवान का गुणगान करते हैं। तो कुबेर के पुत्र जब उनका उद्धार हुआ भगवान उनके गुरु नारद मुनि की कृपा से, कि नारद मुनि ने क्या कहा था, उन्हें 100 सालों के लिए वृक्ष बनोगे फिर भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने इतना गहरा आनंद अनुभव हुआ और उन्होंने बहुत ही सुंदर स्तुतियों के द्वारा परम भगवान के दिव्य रूप का गुणगान किया। कहा गया है भागवतम के प्रथम स्कंद के 4वें श्लोक में कि हमें परम भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो अभी जैसे हम थोड़े दिनों में ही जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे, तो एक तरह से तो हम भौतिक तैयारी कर रहे हैं, पंडाल लगा रहे हैं, वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर दूसरे तरफ से हमें आध्यात्मिक तैयारी भी करनी चाहिए। और आध्यात्मिक तैयारी क्या है, और गहराई के साथ कृष्ण कथा में रुचि लें, और गहराई के साथ परम भगवान का गुणगान करें, और गहराई के साथ ये निर्णय करें कि हमने एक पल एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना। तो आप सबका ये भाव होना चाहिए कि हमने अब से एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना। और जो संदेश कुबेर के पुत्र दे रहे हैं उसका पालन करना। तो क्या संदेश दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने सुंदर स्तुतियों से भगवान के गुणों का वर्णन किया और नारद मुनि उनके गुरु का आभार प्रकट किया कि गुरु की दया से, नारद मुनि जी की कृपा से आज हमें आपका दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान का दर्शन प्राप्त होना कोई आसान काम नहीं है। भगवान का दर्शन प्राप्त होता है गुरु साधु शास्त्र की कृपा से। और आगे वो क्या कह रहे हैं हमें, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप भक्तों को प्रयास करना चाहिए इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए। वो कहते हैं अब से हमारी सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। तो कह रहे हैं अब से, मतलब कि अज्ञानता की स्थिति में उन्होंने शराब भी पी ली, स्त्रियों की संगत भी प्राप्त कर ली, अनेक प्रकार के अपराधी कार्य किए, पर अब गुरु की कृपा से उन्हें जो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है और ये शिक्षा प्राप्त हुई है कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, अब से वो क्या चाहते हैं कि हम सदा वाणी के द्वारा उनकी लीलाओं का वर्णन करें। तो आप भक्तों का भी ये भाव रहना चाहिए कि हम अपनी वाणी के द्वारा क्या करें, भगवान की लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नामों का, भगवान के उपदेश का, दूसरे शब्दों में कृष्ण कथा की चर्चा करें और प्रजल्पा से बचें। रूप गोस्वामी जी कहते हैं श्री उपदेश रमित में कि प्रजल्पा द्वारा भक्ति नष्ट हो जाती है और कृष्ण कथा द्वारा भक्ति आगे बढ़ती है। तो आप भक्ति को बढ़ाना चाहते हो या नष्ट करना चाहते हो? हाँ, सचमुच के ऐसे ही कह रहे हो। तो अगर सचमुच बढ़ाना चाहते हो तो इस श्लोक का पालन करो। आपसे हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। आगे क्या, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवणम करें। तो जीभ से करें हम भगवान का गुणगान और कानों से क्या करें, भगवान का गुणगान सुने। शास्त्र में कहा गया है कि वो वाणी जीव जिसके द्वारा आप भगवान का गुणगान नहीं करो, उसकी तुलना किसके साथ की गई है, मेंढक की आवाज के साथ। तो हमें जीव द्वारा क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान। अगर कोई व्यक्ति आता है आपके पास प्रजल्पा करने के लिए, प्रजल्पा का अर्थ है ईर्ष्या के प्रभाव में आकर कोई चर्चा करना और भौतिक चर्चा करना, उस विषय की चर्चा करना जिसका कृष्णा से कुछ संबंध नहीं, और रूप गोस्वामी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है अत्याहरा प्रेष प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लोलियम जब सदीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो आज प्रजल्पा बहुत ही सरल हो गया है कि नहीं? अब कई बार देखते हो लोग अकेले चल रहे हैं सड़क में और हाथ से उंगली हटा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो आप सोचते हो कि वो पागल है। फिर नजदीक में पहुंचते हो तो देखते हो अरे वो तो फोन में बात कर रहा है। तो आज के वातावरण में प्रजल्पा बहुत आसान हो गया है। पहले तो प्रजल्पा करने के लिए आपको किसी मित्र को निमंत्रण देना पड़ता था, कोई पार्टी में जाना पड़ता था, है कि नहीं? आज तो बैठे बैठे लेटे लेटे आप प्रजल्पा कर सकते हो सेलफोन के द्वारा, है कि नहीं? तो कलियुग में आध्यात्मिक सुविधा भी बढ़ती है और भौतिक सुविधा भी। जैसे कि आज अगर आप इंटरनेट हो तो आप इस्कॉन के कई मूर्तियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। अमेरिका में कई भक्त मुझे मिले थे जो राधा राजभैरी का दर्शन रोज लेते हैं वो इंटरनेट में। कई भक्त हैं जो कि राधा माधव का दर्शन लेते हैं पंचतत्व का मायापुर में। कई हैं जो कि कृष्ण बलराम का दर्शन रोज लेते हैं। एक भक्त ने मुझे कहा मैं तीनों मंदिरों का दर्शन रोज लेता हूं विदाउट फेल। तो ये भी भौतिक सुविधा है। फिर भौतिक सुविधा ये भी है आप सेलर टेलीफोन में पोर्नोग्राफी भी रख सकते हो, गंदी तस्वीरें रख सकते हो, टेलीफोन द्वारा दिन रात प्रजल्पा कर सकते हो, है ना? कई लोग का इतना स्नेह है टेलीफोन के साथ, सोते भी हैं टेलीफोन के साथ। तो प्रजल्पा की सुविधा बहुत आसान हो गई है। तो हम भक्तों को दृढ़ होकर ये निर्णय करना चाहिए कि हम हमारे शब्दों के द्वारा और कानों के द्वारा क्या करेंगे, भगवान की महिमा का गुणगान। और अगर कोई व्यक्ति आ रहा है आपसे राजनीतिक चर्चा या भौतिक चर्चा करने के लिए तो आप हाथ जोड़कर उसे कहिएगा कि भाई हम तो भक्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं और प्रज्वलन द्वारा हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगी, तो आप किसी और से कीजिए। फिर आगे हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे रहें। तो हाथ पांव से क्या करें, इनका उपयोग करें भगवान को प्रसन्न करने में। आप મહારાજ પ્રતાપ રુદ્રા કી કથા પડતે હો ચૈતન્ય ચરિતામૃત મેં રાજા થે ઉન્હોને પ્રયાસ કિયા થા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જી કા દર્શન પ્રાપ્ત કરને કે લિયે કિસી ના કિસી કારણ મહાપ્રભુ જી ઇનકાર કર દે ગયે પર જબ ઉન્હોને દેખા રથ યાત્રા કે શુભ અવસર પર મહારાજ પ્રતાપ રુદ્રા સોને કા ઝાડુ લેકર ઝાડુ દે રહે હૈ પૂરે રાસ્તે મેં જિસમે ભગવાન કા રથ નિકલને વાલા થા ઓર ઉસકે પશ્ચાત ઉસ રાસ્તે કો ધો રહે હૈ ગુલાબ કે પાની કે સાથ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જી ઇતને પ્રસન્ન હુએ કે જો જો મહાપ્રભુ ભી અપની અદ્ભુત દિવ્ય લીલા કો પ્રકટ કર રહે થે અનેક સમય ઓર રથ યાત્રા કે સમય ઉન્હોને અપના વિસ્તાર કિયા થા આર્થ કીર્તન મંડલીઓ મેં ઓર ઉન્હોને મહારાજ પ્રતાપ રુદ્રા કો ખાસ નેત્ર દિયે ક્યુંકિ બડે પ્રસન્ન હુએ થે ઉનકી વિનમ્રતા કો દેખકર જિસકે દ્વારા મહારાજ પ્રતાપ રુદ્રા કો ઉનકા ઉનકા દિવ્ય દર્શન પ્રાપ્ત હુઆ તો દૂસરે શબ્દો મેં જબ ભગવાન દેખતે હૈ કે હમ હમારે હાથ પૈર ઇત્યાદિ કા ઉપયોગ કર રહે હૈં ઉનકી સેવા મેં તો પ્રસન્ન હોતે હૈં ઓર હમે બુદ્ધિ દેતે હૈં જિસકે દ્વારા આપ ઉનકે શરણાગત હો સકો તો આપ લોગ જબ મંદિર આતે હો તો આપકા યે ભાવ નહીં હોના ચાહિયે હમને કોઈ સાપ કી સેવા કરની હૈ બસ આપકો અગર ઝાડુ દેને કી સેવા દી જાય તો બડા ખુશ હોના ચાહિયે અગર આપકો કટકા મારને કી ભી સેવા દી જાય ખુશી સે કરના ચાહિયે બર્તન માંજને કી સેવા દી જાય ખુશ હોના ચાહિયે યે નહીં હમ ક્યા ભંગી હૈ ક્યા તો ઝાડુ દેંગે ક્યા અમરીશ મહારાજ પૂરે પૃથ્વી કે રાજા થે મંદિર મેં જાતે થે રોજ ભગવાન કે મંદિર કો ઝાડુ દેને કે લિયે આપ સિખો મેં એક ગુણ દેખોગે સિખો કે જો ગુરુદ્વારે હૈ ઉસમે જિતને ધની સિખ હૈ વો ઝગડા કરતે હૈ સબસે વિનમ્ર સેવા લેને કે લિયે વિનમ્ર સેવા ક્યા પાણી પિલાઓ જૂતે કી દેખભાલ કરો લોકો કે જૂતે કો ઉઠાકર ઉપર રખો ઓર હિન્દુઓ મેં ક્યા ભાવ હમકો તો સાપ કી સેવા ચાહિયે નીચ સેવા નહીં એસા ભાવ તો યહાં કહે રહે કહા જા રહા હૈ કે હાથ પૈરો કે દ્વારા ક્યા કરના ચાહિયે ભગવાન કે સેવા આગે હમારા મન સદા આપે ચરણ કમલો કા ચિંતન કરે તો આગે નલુકરા મણિગ્રીવા કહે રહે હૈ અબસે હમને જો ગલતી કી સો કી પર અબસે હમારા મન સદા આપકે ચરણ કમલો કા ક્યા કરે તો જબ આપ પઢતે હો શાસ્ત્રો મેં ભગવાન કે ચરણ કમલો કા ચિંતન તો જૈસે હમને ઇસ ભાષણ કે આરંભ મેં કહા થા ચરણ કમલો કા ચિંતન કિસ માધ્યમ સે કરોગે એક માધ્યમ હૈ ભગવાન કી લીલાઓ કા ચિંતન દૂસરા માધ્યમ હૈ ભગવાન કે ગુણો કા ચિંતન તીસરા માધ્યમ હૈ ભગવાન કે નામો કા ચિંતન તો આપ પૂછો કે નામો કે વિષય મેં ક્યા ચિંતન કર સકતે હૈ મહારાજ નામો કે વિષય મેં નામો કી મહિમા કા ચિંતન કરો જૈસે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ને કહા હૈ હે ભગવાન આપ ઇતને દયાલુ હો કે આપને અપને નામો મેં પૂરી શક્તિ ડાલી હૈ નામ ચિંતામણિ કૃષ્ણ ચૈતન્યનાસ વિગ્રહ પૂર્ણ શુદ્ધ નિત્ય મુક્ત ભિન્ન આત્મ નામ નામિનઃ ભગવાન કે નામો મેં નામ મેં કોઈ અંતર નહીં યે સોચો કલી કાલે નામ રૂપ કૃષ્ણ અવતાર કિસ પ્રકાર ભગવાન અવતારિત હોતે હૈ કિસ કલિયુગ મેં તો ભગવાન કે નામો કી મહિમા સુ ફિર ભગવાન કે વિગ્રહ આપ સબકા સૌભાગ્ય હૈ કે આપકો રાધા રાજબિહારી જી કા દર્શન પ્રાપ્ત હોતા યહાં યે મૂર્તિ બડી ઇનકી સ્થાપના પ્રભાજી ને કી થી પ્રભાજી જહાં ભી જાતે થે વિશ્વ મેં ઇન મૂર્તિઓ કી તસવીર ઉનકે સાથ રહેતી થી તો આપ આકે રોજ દર્શન લેતે હો યહાં અગર નહીં ભી આ સકતે તો ઘર મેં ભી દર્શન લે સકતે હો ઇન્ટરનેટ દ્વારા તો ભગવાન કે આચર વિગ્રહ કા ચિંતન કરો ફિર જૈસે મેને કહા થા ગીતા કે સંદેશ કા ચિંતન કરો ફિર ભગવાન કી ઈચ્છા ક્યા હૈ જૈસે પ્રહલાદ મહારાજ ઉન્હે સદા યે ચિંતન રહેતી થી રહેતા થા કિસ પ્રકાર ભગવાન કે આદેશ કો પૂરા ક્યા જાય તો કહે રહે હૈ સદા હમારા મન આપે ચરણ કમલો કા ચિંતન કરે ભાગવત ગીતા દ્વારા યે જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોતા હૈ કે અગર આપને મન કો વશ મે કર લિયા તો દેહાત્મિક જીવન સરળ બનતા હૈ, ઓર અગર આપ મન કો વશ મે નહીં કર પાઓગે તો આધ્યાત્મિક જીવન કઠિન હો જાયેગા. મન કો બંધુ બનાઓ, શત્રુ નહીં. મનુ બંધુ, મન બંધુ જબ માના જાતા હૈ જબ મન કા વિષય હૈ આધ્યાત્મિક સફળતા. જબ આપકે મન મે કેવલ ભૌતિક વિચારો કા ભાવ હૈ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કા ભાવ હૈ, તો યે મન આપકા શત્રુ બન રહા હૈ. ઓર હમારે પરમ ગુરુજી ભક્તિ સિદ્ધાંતજી કહેતે થે, રોજ સુબહ જબ આપ ઉઠો આપણે મન કો 100 બાર જૂતોં સે મારો, ઓર રાત કો સોને જાઓ તો ઝાડુ લેકર 100 બાર મારો. અબ યે વાસ્તવિકતા મેં મત કરના, નહીં તો આપ સબકે સિર મેં એક પગડી હોગી બેન્ડેજીસ કી, વો લોગ કહેંગે યે તો ક્યા કોઈ બોગસ કલ્ટ હૈ. પર ઇસકા ભાવ યે હૈ કે રોજ સુબહ જબ આપ જાગો તો કડકી સે કહો મન સે, હમને તુમ્હારે આદેશ વિપરીત વિચારો કો નહીં સુનના, હમ કેવલ શાસ્ત્ર ઓર ભગવાન કે પ્રતિનિધિઓ કે વિચારો કો સુનેંગે, ઉસકે આધાર પર જીવન કો બિતાએંગે. રોજ સુબહ 100 બાર વૈસે કહો ઓર રોજ રાત કો વૈસે કહો, ફિર આપકા મન સ્થિર હો જાયેગા. ઓર અગર આપ ધ્યાનપૂર્વક જૈસે કી યે કહે ચુકે હૈ શ્લોક મેં શરણમ કીર્તનમ કરોગે તો ફિર ખુદ હી ખુદ વિષ્ણુ સ્મરણમ જો સંદેશ ઇસ શ્લોક મેં દિયા જા રહા હૈ ઉસકા પાલન કર પાઓગે. તો આગે હમારા સિર ઇસ સંસાર કી હર વસ્તુ કો નમસ્કાર કરે, ક્યોંકિ સારી વસ્તુએ આપકી વિભિન્ન રૂપ હૈ, ઓર હમારી આંખે આપકે અભિન્ન વૈષ્ણવ કે રૂપો કા દર્શન કરે. તો આગે યે કહે રહે નલુ કવર મની ગ્રીવા કે જો ભી વસ્તુ હો ઉસકા હમ ઉપયોગ કરતે કિસે, ભગવાન કે સેવા મેં, ઓર હમારે નેત્રો દ્વારા હમ સદા વૈષ્ણવ કા દર્શન કરે. વૈષ્ણવ કા દર્શન કરના કોઈ સરળ કાર્ય નહીં હૈ. વૈષ્ણવ કા દર્શન કરના કા અર્થ હૈ સાધુ સંગત મેં રહે. યે નહીં કે હમને કેવલ વૈષ્ણવ કા દર્શન લે લિયા. અબ વૈષ્ણવ કા દર્શન કા અર્થ હૈ સાધુ સંગત મેં રહેના. સાધુ સંગત, સાધુ સંગત સર્વ શાસ્ત્ર કાયા, લાવ માત સાધુ સંગત સર્વ સિદ્ધિહાયા. જૈસે કે ચૈતન્ય ચરિતામૃત મેં કહા ગયા હૈ, સાધુ કી સંગત મેં રહો, સાધુ કી સંગત મેં રહો. લાવ માત્ર, લાવ માત્ર કા અર્થ હૈ એક સેકન્ડ કા 14વા હિસ્સા. એક સેકન્ડ કે 14વે હિસ્સે કે લિયે ભી અગર આપકો કિસી શુદ્ધ ભક્ત કી સંગત મિલે તો આપકા જીવન સુધર સકતા હૈ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને રામનંદ રોય સે પૂછા, સબસે અધિક દુઃખ કી ક્યા સ્થિતિ હૈ? તો રામનંદ રોય ને બહુ સોચ કર કહા, સબસે દુઃખ કી સ્થિતિ હૈ જબ આપ ભક્તો કી સંગત સે જુદા હો જાઓ. વો કષ્ટ કો સહના બહુ મુશ્કિલ હૈ. તો આપ ભક્તો કો સાધુ સંગત કા લાભ ઉઠાના ચાહીએ. હર હફતે મંદિર આના ચાહીએ, ઓર જીતના સાધુ સંગત પ્રાપ્ત કરોગે ઉતની તેજી કે સાથ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ભી આપ કર પાઓગે. તો મનુગ્રીવા મનીગ્રીવા કહે રહે હૈ, હમારી આંખે આપકે અભિન્ન વૈષ્ણવ કે રૂપો કા દર્શન કરે. તો વૈષ્ણવ કી સંગત મેં ક્યા હોતા હૈ? કૃષ્ણ કથા. વૈષ્ણવ કી સંગત મેં ભૌતિક કથા નહીં, કૃષ્ણ કથા. ઓર વૈષ્ણવ કી સંગત મેં આકર હમારા આધ્યાત્મિક જીવન આગે બઢતા હૈ. તો યે સંદેશ જો દિયા જા રહા હૈ મનીગ્રીવ નલકવાડા કે દ્વારા, ઇસ સંદેશ કા હમે લાભ ઉઠાના ચાહીએ. ઓર અગર હમ ઇસ પૂરી લીલા કા સ્મરણ કરે તો ક્યા ક્યા અનર્થ દૂર હોયગા? ધન કા આકર્ષણ, ઘમંડ. જો ધની વ્યક્તિ ઘમંડી હો જાતે હૈ, હમ ઇતને બડે આદમી હૈ, યે નહીં જાનતે કે કલ મિટ્ટી બન જાયેંગે, યે ઘમંડ નષ્ટ હો સકતા હૈ. ફિર યે ભાવના, ઐશ્વર્ય ધન હૈ, શરાબ ચાહીએ, સ્ત્રીઓ કી સંગત ચાહીએ, યે જો અનેક પ્રકાર કે ભૌતિક વિચાર ઓર ઘમંડ, યે સબ ટૂટ સકતા હૈ કૈસે? ઇસ લીલા કા દિન રાત ચિંતન કરકે. ભગવાન કે જો અનેક લીલાએ હૈ ઉનકે પીછે ઠાકુર ભક્તિવિનોદજી સમજાતે હૈ कि अगर तुम इस लीला का स्मरण करोगे तो क्या अनर्थ कमजोर नष्ट होगा। जैसे आपने थोड़े दिन पहले बलराम जयंती मनाई तो एक असुर था पलम्ब सूरा, जिसने अपने आप को बड़े सुंदर ग्वाले के रूप में सजाकर भगवान के सेना में आ गया। भगवान के सेना में आ गया, भगवान ने तो पहचान लिया ये असुर आया है मुझे मारने के लिए। तो भगवान का ऐसा व्यवहार था कि पलम्ब सूरा को कुछ पता ही नहीं लगे कि वो समझ गए हैं। तो भगवान ने दो सेना बनाई, एक सेना के नेता थे भगवान स्वयं, दूसरे के थे बलराम। वो शर्त ये रखी कि जो हारेगा वो दूसरे को अपने पीठ में उठाएगा। तो भगवान कृष्ण की सेना हार गई तो हरे को प्रलंब सुर उनकी सेना में था, तो हरे को सामने की सेना के एक सदस्य को पीठ में उठाना। पता नहीं लोग ये खेलते हैं आजकल, आजकल तो लोगों को कंप्यूटर गेम चाहिए तो इनका रिवाज है चले गया। तो प्रलंब सूरा ने बलराम को उठाया अपने पीठ में, और प्रलंब सूरा बलराम को पीठ में उठाकर आस्ते 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 सब भक्तों के संगत से दूर जा रहा था। योजना ये थी दूर पहुंचकर इसका गला दबा दूंगा। तो जैसे वो दूर आगे बढ़े, बलराम ने अपना रूप प्रकट करना शुरू किया, फिर असुर ने भी अपना रूप प्रकट किया। उन्होंने बड़ी सरलता से बलराम ने उसका वध कर दिया। तो ठाकुर भक्त जी समझाते हैं कि ये जो प्रलंब सूर के वध की कथा अगर आप सुनोगे तो जो आपकी इच्छा है प्रतिष्ठा, हमें ऊंचा स्थान चाहिए, ऊंचा पद नहीं मिलेगा तो हम सेवा नहीं करेंगे, हम इतने अच्छे भक्त हैं, इतने श्लोक हम जानते हैं, हम इतने अच्छे प्रचारक हैं, फिर स्त्रियों भोग विलास इत्यादि के प्रति जो आकर्षण है, ये ऊंचा पद आकर्षण, हमें धन चाहिए, धन चाहिए, चापलूसी करेंगे, भक्त भी बनेंगे, थोड़ा धन कमाएंगे, ये जो अनेक इच्छाएं रहती हैं धन कमाने की, स्त्रियों की संगत का लाभ उठाने का, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में ऊंचा आदर चाहिए, ये विचार नष्ट हो जाएंगे इस प्रलंब सूरा की लीला सुनकर। अगर आप दिन रात ये लीला का स्मरण करोगे किस प्रकार बलराम ने प्रलंब सूरा सूर का वध किया, तो आपका जो भौतिक इच्छाएं हैं इस प्रकार की क्या होंगी। तो हमें एक इस दसवें स्कंद में भगवान के अनेक लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। पर स्मरण तो आप जब का कर पाओगे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो स्मरण कैसे करोगे या सुनोगे। तो सुनना भी आवश्यक है और पढ़ना भी आवश्यक है। और ये दसवां स्कंद भागवतम का हिंदी भाषा में भी प्रकाशित हो गया पूरा। ये प्रभुपाद जी का भागवतम पूरे 12 स्कंद में प्रकाशित हो गया हिंदी भाषा में। तो आप लोग पढ़िए इसे और अपने जीवन को सफल बनाइए। और इनका सार दिया गया है कृष्णा बुक में। तो अगर पूरा भागवतम नहीं पढ़ सकते तो कृष्णा बुक पढ़ो, और इस प्रकार रोज एक लीला पढ़ो, और इस प्रकार आप आध्यात्मिक परिवर्तन कर पाओगे और भौतिक आकर्षण को नष्ट कर सकोगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? अरे तो सब करोगे ये श्लोक, ये संदेश का पालन करोगे? क्या है संदेश, ये संदेश क्या है, इस श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक का संदेश? जल्दी जल्दी, मुझे देर हो रही है। हाँ भगवान क्या कह रहे हैं, कौन उच्चारण कर रहा है इस श्लोक का? हाँ क्या कह रहे हैं? अब से मतलब पहले अज्ञान था, मैं हमने गलत काम किया, पर अब गलत काम नहीं करेंगे। और क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं जीव द्वारा? क्या करें, कानों द्वारा, मन द्वारा, हाथों और पैरों द्वारा, और नेत्रों द्वारा?
भगवान का दर्शन,
भगवान के वैष्णव का दर्शन है। और वैष्णव का दर्शन लोगे तो खुद ही खुद क्या सुनने में आएगा, भक्ति क्या महत्व। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, भगवान के शरणागत होने का एक लक्षण यह है, जो अनुकूल है वो स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे। ओके, हरे कृष्णा।